ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने यूजर्स सरचार्ज को स्थगित करने की घोषणा की है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत में उपग्रह संचार बाजार वर्ष 2028 तक $20 बिलियन तक पहुंच जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ और लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा माध्यम। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता एप्स का शुभारंभ किया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आधिकारिक रूप से नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज शहर के विभिन्न नागरिक संगठनों से पिछली सरकार के शासनकाल में कूड़ा निस्तारण को लेकर लागू किए गए यूजर्स सरचार्ज को स्थगित करने की घोषणा की है। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उपस्थित रहे। इससे पहले दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने यूजर्स सरचार्ज पर नागरिक संगठनों से प्राप्त आपत्तियों के सारांश को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के समक्ष रखा। श्री सचदेवा ने कहा कि नागरिक संपत्ति कर देना चाहते हैं, लेकिन यूजर्स सरचार्ज के अतिरिक्त भार से वे पीड़ित हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत में उपग्रह संचार बाजार वर्ष 2028 तक $20 बिलियन तक पहुंच जाएगा। नई दिल्ली भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपग्रह संचार के क्षितिज पर होने के साथ भारत के प्रत्येक कोने में अगली पीढ़ी की सेवाएं प्रदान करने और नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश न केवल उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाएगा, बल्कि उन्हें सार्वभौमिक, सार्थक और स्पष्ट रूप से आकार देगा। श्री सिंधिया ने कहा कि दूरसंचार ने संपर्क की शक्ति के माध्यम से भारत को 11वीं से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस अकादमी के झणौदा कला परिसर में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अकादमी के अनुसार इस परेड में 2780 कांस्टेबल पास हुए, जिनमें 1240 महिलाएं शामिल हैं। अकादमी ने बताया कि ये परेड नवनियुक्त कांस्टेबलों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के अवसर पर की गई और अब ये सभी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। अकादमी के अनुसार इन कांस्टेबलों को नए आपराधिक कानूनों और साइबर अपराध से निपटने के उपायों के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा विशेषज्ञों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से भी इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली में अपनी पार्टी के छात्र संगठन का नाम बदलने की घोषणा की है। श्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के छात्र संगठन का नाम अब एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ASAP होगा। उन्होंने युवाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि ASAP न सिर्फ छात्र राजनीति को एक नई दिशा देगा, बल्कि वैकल्पिक राजनीति का एक सशक्त मंच भी बनेगा। श्री केजरीवाल ने कहा कि संगठन के जरिए पार्टी एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करेगी जो राजनीति की परिभाषा को बदलते हुए देश के लिए काम करेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरीक्षणों में तेजी लाने और गलत प्रक्रियाओं से फल पकाने वाले एजेंटों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया है। साथ ही सिंथेटिक रंगों या मोम के साथ फलों को रंगने और कोटिंग करने पर भी रोक लगाई है। एक रिपोर्ट।
इस अभियान के तहत फल के गोदामों का निरीक्षण किया जाएगा, खासतौर पर उन गोदामों का जहां फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। प्राधिकरण ने कहा है कि जिन गोदामों या फल के डिब्बों में कैल्शियम कार्बाइड पाया जाएगा, उन गोदाम मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के संज्ञान में फल को एथेफोन रसायन में सीधे डुबाकर पकाने के मामले भी सामने आए हैं। प्राधिकरण ने कहा है, एथेफोन का इस्तेमाल केवल एथिलीन गैस बनाने के लिए किया जा सकता है, जो केवल निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिए। एथेफोन रसायन के इस्तेमाल को लेकर प्राधिकरण द्वारा एक मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को फल को पकाने के लिए सुरक्षित और अनुपालन वाली प्रथाओं को सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह।
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य बना दिया है। अनुभव की अवधि की गणना उम्मीदवार के अधिवक्ता के रूप में प्रोविजनल रूप से पंजीकृत होने की तारीख से की जा सकती है। अनुभव की ये अनिवार्य योग्यता आज की तिथि से पहले उच्च न्यायालयों द्वारा शुरू की जा चुकी भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। ये केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2047 तक कृषि क्षेत्र में विकसित भारत की छवि देखने के लिए संबंधित क्षेत्रों में लगातार 5% की विकास दर बनाए रखना जरूरी है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा माध्यम। उन्होंने कहा कि देश की 50% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 18% है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देने पर है।
विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती, और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे, और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेंगे। खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि यदि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है तो कृषि क्षेत्र को $1 ट्रिलियन का बनाना होगा। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में दीपोदर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किया। ये ऐप्स डिजिटल नवाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। श्री जोशी ने इस अवसर पर कहा कि ई शासन के उपकरण के रूप में ये ऐप्स देश में कृषि बुनियादी ढांचे और जन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि ये ऐप्स दक्षता, सेवा गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिचालन कुशलता को बढ़ाने में सहायक होंगे। श्री जोशी ने कहा कि नवीनतम प्रौद्योगिकी के जरिए ये ऐप्स पारदर्शिता और जवाबदेही में भी सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हर लाभ प्रदान करने संबंधी सरकार की वचनबद्धता भी दोहराई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि बाजार नियमन और स्वतंत्रता के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब बढ़ती भू राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच भारत घरेलू विकास पर अधिक निर्भर हो रहा है। नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिक दिवस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में विश्व कई व्यापक व्यवधानों का साक्षी बना है। इस कारण मजबूत, उत्तरदायी और दूरदर्शी संस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
श्रीमती सीतारामन ने परिसंपत्ति, मौद्रीकरण, विनिवेश और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे भारत में जारी ढांचागत सुधार संबंधी सभी प्रयास बाजार की संभावनाओं को खोलने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दिशा में हुए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने का आकांक्षी है। आकाशवाणी से बातचीत में CCI की अध्यक्ष रवनीत कौर ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के 16 वर्षों के बाद आयोग अब नवीनतम घटनाक्रमों के साथ गति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह समय के साथ अनुकूल और विकास जारी रखने पर भी ध्यान दे रहा है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि उनके निवास स्थान पर आयोजित जनसेवा शिविर 30 मई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान इस शिविर में करवा सकते हैं। नमो भारत रेल के दिल्ली स्थित न्यू अशोकनगर स्टेशन पर रेल सेवा बहाल हो गई है। स्टेशन पर रेल सेवाएं निर्धारित समय से संचालित की जा रही हैं। शनिवार को तेज आंधी के कारण इस स्टेशन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से स्टेशन पर सेवाएं बंद कर दी गई थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आधिकारिक रूप से आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली गेम्स आगामी राष्ट्रीय, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए एथलीटों की पहचान करने और उन्हें निखारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने खेल बजट को दोगुना कर दिया है। सरकार ने पुरस्कार राशि को 4 गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और शहर में विश्व स्तरीय खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता का उल्लेख किया।
दिल्ली के खिलाड़ियों को सुविधाएं न मिलने के कारण उन्हें अन्य राज्यों में जाकर के अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था। हम स्टूडेंट्स को वो सारी सुविधाएं देंगे, युवाओं को वो सारी खेलों की सुविधाएं देंगे ताकि दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के साथ रहे और दिल्ली का नाम रोशन करे।
दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विभाग राजधानी में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।
दिल्ली सरकार का यह संकल्प है कि खेलों को केवल आयोजन तक हम सीमित नहीं रखेंगे। दिल्ली में फेस्टिविटी का माहौल, खेलों के प्रति ऊर्जा का माहौल, शिक्षा और खेल सब की तरह मनाए जाए, इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
मेगा खेल कार्यक्रम 12,000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी का साक्षी बनेगा। इस कार्यक्रम में शहर के 25 से अधिक आयोजन स्थलों पर 40 से अधिक खेलों में एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। इन खेलों का आयोजन दिल्ली ओलंपिक संघ द्वारा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इन खेलों को प्रायोजित किया जा रहा है। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम DTC के नेहरू प्लेस बस टर्मिनल पर स्मार्ट कोल्ड RO वाटर डिस्पेंसर और जल दूध पहल की शुरुआत की। यह पहल दिल्ली हीट एक्शन प्लान 2025 के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को गर्मी से राहत दिलाना है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी बस टर्मिनल पर स्मार्ट कोल्ड RO वाटर डिस्पेंसर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 500 से अधिक बस स्टॉप पर जल दूत स्वयंसेवक भी तैनात किए जा रहे हैं, जो यात्रियों को ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे। एक अनूठी पहल के अंतर्गत देश में पहली बार एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरसिटी यानी दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड रेल नमो भारत और मेरठ शहर में चलने वाली मेरठ मेट्रो जल्द दौड़ती नजर आएंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली और अनुकूलित समय सारणी से नमो भारत और मेरठ मेट्रो दिल्ली, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने में नया आयाम देंगी। NCRTC ने बताया कि नमो भारत रेल की परिचालन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो फिलहाल दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक संचालित हो रही है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ नगर निगम के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली नगर निगम महापौर राजा इकबाल सिंह से निगम के मुख्यालय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं, कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। निगम महापौर ने प्रतिनिधि मंडल को निगम की कार्यप्रणाली, परियोजनाओं और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन जारी हैं। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नामांकन award.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। IPL क्रिकेट में दिल्ली में चेन्नई सुपरकिंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपरकिंग्स ने 5वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्यटन क्षेत्र में हो रही प्रगति पर आज एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी तथा कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने यूजर्स सरचार्ज को स्थगित करने की घोषणा की है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में उपग्रह संचार बाजार वर्ष 2028 तक $20 बिलियन तक पहुंच जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा माध्यम। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आधिकारिक रूप से नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।